चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर पीस आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हैं वो हार्ड हिट हैं, और हमको ये जो कॉन्वर्सेशन मैं आज सुन रहा हूँ, कुछ लोग खुश हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं, ये बड़ी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये होल्ड करनी जरूरी थी। इससे पहले क्या हुआ था कि लिबरल एमपी सलमा जाहिद जो हैं उन्होंने एक लेटर जिसके के ऊपर सिग्नेचर्स थे 20 गवर्नमेंट एमपीज के, उन्होंने अपनी लिबरल गवर्नमेंट को वो लेटर दिया था जिसमें कि उनको कहा गया था कि भाई सीज फायर की तरफ जाएं। तो जिस वक्त ये यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर की तरफ गई है ये रेजोल्यूशन, तो उन्होंने आज इसको बड़ा वेलकम किया इस वोट को, और उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं उन तमाम एमपीज की जो मेरे साथ खड़े रहे और जिन्होंने पीस के लिए आवाज उठाई, और इसकी वजह से अब बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनकी जान बचेगी। तो ये जनाब बड़ी मिली जुली जो है आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये सारी कार्रवाई जो है वो चलती रही। अच्छा जनाब, आज की जो सबसे बड़ी, हम इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं कह सकते क्योंकि ये एक हफ्ता पहले डग फोर्ड साहब ने कहा ही था कि हम पील रीजन को, ये जो रेजोल्यूशन की तरफ हम जा रहे थे इसको हम रीथिंक करेंगे। तो आज जो है फॉर्मली जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं ऑन्टेरियो के, म्युनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग पॉल कलांट्रा, उन्होंने आज ये अपना प्लान जो है सारा रोल आउट किया है। ये प्लान जो बनाया था डग फोर्ड साहब ने पैट्रिक ब्राउन जो कि ब्रैम्पटन के मेयर, और मिसेस आगा जो उस वक्त जो थी ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन एंड मिसेस आगा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी के साथ मिलकर जो बनाया था, जिसको कि हेजल मकैलियन एक्ट कहा गया था, और कहा था कि जी हम इसको, ये जो मिसेस आगा ब्रैम्पटन और कैलेडन है इनको इंडिपेंडेंट सिटीज बनाएंगे बाय 2025। तो उसके ऊपर आज पॉल कलांट्रा साहब ने कहा कि नहीं, हम अपना प्लान रिवर्स कर रहे हैं, और हमने बहुत सारी पब्लिक कंसल्टेशन की हैं जो उससे पहले के नहीं की थी, और हमने एक ट्रांजिशन बोर्ड बनाया था जिसको के कहा था कि आप सारी ये डिटेल्स लेकर आए, और उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने कहा जी के पॉल कलांट्रा साहब ने कि हमने इन तमाम म्यूनिसिपल लीडर्स की बातें सुनी हैं, लोगों की बात सुनी है, और हमें पता चला है कि ये जो कुछ भी हम करने जा रहे थे उससे टैक्सेस बेतहाशा ऊपर चले जाने थे, और जो क्रिटिकल सर्विसेज होनी थी उसके अंदर भी बहुत सारी डिसरप्शन पैदा हो जानी थी, और गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि लोगों के टैक्सेस हाई हो या उनको सर्विसेज ना मिले। फोर्ड साहब ने मई के अंदर जब ये अनाउंस किया था तो ये उन्होंने इसलिए किया था कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था हेजल मकैलियन के साथ, जो कि बहुत अरसे तक जो थी इसकी मिसेस सागा की मेयर रही थी, और मरने से पहले इन्होंने वादा किया था उनके साथ कि ये जी जो आपकी बड़ी लंबी जो 50 ईयर ओल्ड ड्रीम है वो मैं पूरी करूंगा। हेजल मकैलियन साहब की, साहिबा की डेथ जो थी जनवरी में हुई थी 101 इयर्स की एज में। तो ये आज जाहिर है कि उनको अफसोस हुआ डग फोर्ड साहब को कि अपनी दोस्त जो है उनका वो वादा पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इसमें वो कहते हैं जी लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इस महीने के शुरू में ब्रैम्पटन के मेयर जो पैट्रिक ब्राउन है उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडिंग पैरामेडिक सर्विसेज जो हैं वो डिसरप्ट होंगी अगर आपने ये इन तीनों इलाकों को अलग अलग किया। कैलेडन के मेयर एनेट ग्रोव्स जो हैं उन्होंने भी कहा था कि आप प्लीज रीथिंक करें, फोर्ड साहब को कहा था अपने इस फैसले पर। अब बॉनी क्रॉम्बी जो है इसके ऊपर बड़ा गुस्से हैं, और बॉनी क्रॉम्बी क्योंकि अब ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी की हेड बन गई हैं तो अब मेयर नहीं रहेंगी, लेकिन वो कहती हैं जी कि टाइम इसमें बड़ा वेस्ट हुआ है, और हम तो चाहते थे कि एक एडिशनल लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो खत्म किया जाता ताकि मिसेस आगा ब्रैम्पटन और कैलेडन जो है एफिशिएंटली काम कर सकते, और जो बहुत सारी कंफ्यूजन थी सर्विसेज में और लोगों में भी वो भी खत्म हो जाती, और रेजिडेंट्स जो हैं उनका और बिजनेसेस का टाइम और मनी बचता। ब्राउन साहब ने कहा था कि अगर ये इसकी डिवीजन होगी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो 1.3 बिलियन डॉलर्स के प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर कोई अगले 10 साल में इजाफा होएगा, और जो है इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। क्रॉम्बी साहबा इसलिए जोर दे रही थी क्योंकि वो कहती थी कि मिसेस सागा के जो टैक्स पेयर है वो 60% ऑफ पील के कॉस्ट जो है उसको कवर करते हैं, और 84 मिलियन एनुअली जो है सब्सिडीज में देते हैं सर्विसेज की ब्रैम्पटन और कैलेडन को, जो कि फेयर नहीं है मिसेस सागा के रेजिडेंट्स के लिए। तो बहरहाल जी ये आज इसको अब अनाउंस कर दिया गया फाइनली कि पील रीजन को जो है उसकी रेजोल्यूशन नहीं होगी। बॉनी क्रॉम्बी साहिबा ने जी आज अनाउंस किया है कि मिसेस सागा की वो मेयर जो है जनवरी 12 तक रहेंगी, और उसके बाद फिर वो जो ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी की जो बागडोर है उसको वो संभालेंगी। आज ये लास्ट अपना मैसेज दे रही थी सिटिंग काउंसिल मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा जी कि पिछले 10 साल से मैं مسز آگا کے ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو ان کے لیے میں کام کر رہی تھی وچ از این آنر, اور اس سے پہلے ایز اے کاؤنسلر فار وارڈ 5 بھی میں کام کر رہی تھی. جو ریزیڈنٹس نے اپنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس میرے میں شو کیا ہے تو میں بڑا اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ سٹی ہے مسز آگا جہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو ریز کیا, تو میں بڑی پراؤڈ ہوں جو میں نے کام یہاں پہ ہم سب نے مل کے کیا ہے اور اس سٹی کو ٹرانسفارم کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں سٹی کے ساتھ ابھی کام کروں گی ٹو پاس 2024 بجٹ, اور جب تک کہ نئی میئر نہیں آ جاتے ہیں کوئی بھی جو بھی, تو اس وقت تک میں آپ کے ساتھ کام کرتی رہوں گی. وہ کہتے ہیں جی کہ ہاؤسنگ, کاسٹ آف لیونگ, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, وہ تمام مدے جو کہ ایز مسز آگا میئر میں لڑتی تھی, وہی مدے مجھے جو ہے آنٹیریو کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں ایز لبرل پارٹی لیڈر. ان کے اوپر بھی مجھے چیلنجز ملیں گے اور میں اس پہ فائٹ کروں گی, تو لیکن آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اپ دس نیو چیلنج. تو جناب آج انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں. انوائرمنٹ کینیڈا نے جی آج وارننگ ڈالی ہے ٹورنٹو کے لیے, اور انہوں نے کہا جی کہ ناردرن ٹورنٹو کے اندر 15 سینٹی میٹر تک سنو جو ہے وہ آ سکتی ہے. خاص طور پہ ایڈوائزری جو ہے وہ آکسبرج, بیونٹن, نارتھ ڈرہم ریجن, بیری, اوریلیا اور مڈ لینڈ کے لیے ہے, جہاں پہ کہ انوائرمنٹ کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ہیوی سنو فال آ سکتی ہے اور اس کے لیے ویزیبلٹی لو ہو سکتی ہے کیونکہ جو سنو ہے وہ بھی بلو کرتی رہے گی اور فلریز بھی آج صبح دیکھی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ٹریول جو ہے بہت ہیزرڈس رہے گا اور ویزیبلٹی چونکہ کم رہے گی, تو انوائرمنٹ کینیڈا کہتا ہے کہ آپ آہستہ چلائیں اور اپنی جو ٹیل لائٹس ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور ہمیشہ رکنے کے لیے تیار رہیں. آج صبح ٹورنٹو کے اندر جو ٹیمپریچر تھا -7 تھا ود ونڈ چل, تو جو ہے ویدر بس جی اب دسمبر ظاہر ہے آ ہی گیا, تو بلی کی خالہ کب تک خیر منائے گی جناب, اب تو برف آنی آنی ہم کب تک خیر منائیں گے. تو ابھی ناردرن ٹورنٹو میں آ رہی ہے, ابھی باقی سارے اونٹیریو میں بھی آ جائے گی, تو ہم بس کمبل پہن کے پھرا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں. یو کے اندر جو پرائم منسٹر رشی سونک صاحب ہیں جی, انہوں نے جو ایمرجنسی بل لے کر وہ جو آئے تھے ٹو ریوائیو پلان ٹو سینڈ اسائلم سیکرز ٹو روینڈا, وہ آج پاس ہو گیا ہے. اور اس کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ نہ صرف ان کی اپنی پارٹی میں لوگوں نے بڑی ریزینٹمنٹ شو کی ہے بلکہ جو ہے وہ جو رائٹ ونگ پولیٹیشنز ہیں انہوں نے تو دکھائی ہے, اور لیبر پارٹی بھی بالکل اس کے اوپر خوش نہیں ہے. ابھی جو نئے پولز آئے ہیں اس میں لیبر پارٹی 20 پوائنٹس اہیڈ چل رہی ہے ان سے, لیکن پھر بھی ان کے جو کوئی آرگنائز یہ بل کر رہے تھے انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے تمام ایم پیز کو کہا تھا کہ آپ کو اس بل کو بیک کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے نہ کیا تو یہ ریبیلین جو ہے وہ سمجھا جائے گا. حالانکہ رشی سونک صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ اس بل کے خلاف بولنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے اگینسٹ یوز نہیں کیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے پھر اس صورت میں بل جو تھا وہ پاس نہیں ہو سکتا تھا. سونک صاحب جو تھے ایک دن پہلے جب ان سے پوچھا گیا اور لوگوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جائیں, تو انہوں نے اپنی ریپیوٹیشن کو اسٹیک پہ ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میری ریپیوٹیشن جو ہے اس کو میں اسٹیک پہ ڈالتا ہوں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ پاس ہوئے گا یہ بل. اور جب یہ فرسٹ جو اس کی جو اب ان کی وکٹری آئی ہے ہاؤس آف کامنز میں کہ 313 جو ممبرز تھے اس میں سے 269 نے اس کو یس کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کنزرویٹو پارٹی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جو کنزرویٹو پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ یو کے ہیومن رائٹس آبلیگیشنز جو ہیں اس کو بریچ کرتا ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ رائٹ ونگ پولیٹیشنز تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے, لیکن بہرحال رشی سونک صاحب کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے کہ یہ بل جو ہے اس کا آج فرسٹ ووٹ پاس ہوا ہے. تو اب دیکھیں گے آگے کیسے یہ چلے گا, کیونکہ رشی سونک صاحب جو ہیں روینڈا کے لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے اور وہ یہی ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہم اسائلم سیکرز آپ کے جس کو کہ روینڈا جس کو کہ تھرڈ جو ہے سیف کنٹری کہا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے کیسے یو کے کام کرے گا. دبئی کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے یو اے ای میں COP28 یعنی کہ کلائمیٹ جو چینج ہے اس کی سمٹ چل رہی ہے, تو یہاں پہ جو ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں انہوں نے آج بڑی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک ہیوج ڈیل جو ہے یہاں پہ سائن کی گئی ہے جس میں کہ کنٹریز نے اگری کیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم کہ یہ فاسل فیولز کے جو بیڈ افیکٹس آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج پہ ان کو چینج کیا جائے گا. COP28 کے جو پریزیڈنٹ تھے سلطان الجبر جو کہ سی ای او بھی ہیں یو اے ای کی جو کمپنی ہے آئل کمپنی ایڈنوک اس کے, انہوں نے اس کو بڑا سراہا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو آلموسٹ 200 کنٹریز کا اپروول جو اس کے لیے آیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور اب ہم جو یہ گلوبل وارمنگ ہے اس کو کم کرنے میں اور ٹیمپریچر کو 1.5 سی سی अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल रखने पे कामयाब हो सकेंगे। यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी जो यहां पे आए हुए हैं दुबई के अंदर, उन्होंने भी इसकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूएस और चाइना जो हैं वो भी अपनी लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेगा। फ्रेंच मिनिस्टर फॉर एनर्जी एग्नेस पेनियर रूनेशे ने कहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है क्लाइमेट डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म के लिए, और अब जो है हम फॉसिल फ्यूल से एग्जिट करेंगे। नॉर्वे के क्लाइमेट एनवायरमेंट मिनिस्टर एस्पन बर्थ एड ने भी कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया सारी जो है वो यूनाइट हुई है इसके ऊपर कि हम जो है फॉसिल फ्यूल से आगे चलें, और इसकी वजह जो है बहुत लंबी टॉक्स और बहुत ज्यादा जो इंटेंस डिप्लोमेसी चलती रही है उसका ये सब नतीजा है। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं इस सिलसिले में, अब जो अगले दो साल जो ये सीओपी की मीटिंग्स होंगी अजरबैजान और ब्राजील में, उसमें सारी ये डिटेल्स थ्रैश की जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको 194 से 366 बिलियन डॉलर्स पर ईयर जो हैं वो लगाने पड़ेंगे अगर उनको जो है टेम्परेचर्स मेंटेन रखने हैं दुनिया में। और इसके अलावा जो बाइडन साहब हैं उन्होंने भी आज ये दुबई के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, और उन्होंने कहा जी कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उस पर काम करने की जरूरत थी। टेस्ला जो है जी उसने तकरीबन 2 मिलियन कार्स जो यूएसए में हैं खासतौर पे उनको रिकॉल किया है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। वो कहते हैं जी कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं और इसका जो एक डिफेक्टिव सिस्टम है उसको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका के मकसद ये था कि ड्राइवर्स जो हैं वो अटेंशन पे करें वाइल यूजिंग ऑटो पायलट। तो इसमें आपको पता ही है कि यूएस जो सेफ्टी रेगुलेटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा वार्निंग्स दी थी और अलर्ट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो ड्राइवर्स हैं ये जिस वक्त ऑटो पायलट पे छोड़ देते हैं तो कभी कभी बहुत सारे जो हैं वो एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, तो उसकी वजह से टेस्ला ने ये रिकॉल किया है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करती रही है, और अब इन्होंने जो रिकॉल किए हैं मॉडल्स टेस्ला ने वो हैं YS3X, और ये डिफरेंट है, वाई अलहदा मॉडल है, एस डिफरेंट है, थ्री अलहदा है, एक्स डिफरेंट है। ये सारे जो प्रोड्यूस किए गए थे October 5, 2012 से December 7, 2023 के बीच में, इन सबको वापस बुला रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद से टेस्ला के जो शेयर्स हैं जी वो गिर गए हैं 3% के हिसाब से, तो ये उनके लिए जो है बैड न्यूज है। ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे, हलाल बफे ऑफ कोर्स, ये विरिज टेस्ट, और इनकी अब नई लोकेशन ओकविल में आ गई है। ये है 2294 लेकशोर रोड वेस्ट में, और इनका नंबर है 9052262294। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया, ये 1400 लोगों का आप यहां पे अपना बिजनेस या फैमिली का कोई इवेंट कर सकते हैं, और कहते हैं जी ग्रेट एम्बियंस हैं, 32 रूम लग्जरी होटल है ये, और अगर आपको अपने कोई भी इवेंट्स बुक कराने हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं @6479653823। एंड जनाब जो है ग्रिल एंड चिक जो है अब खुल गया है मिसिसागा में, 3525 प्लैटिनम ड्राइव मिसिसागा में, और अगर आप इनको इनके साथ ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं @905-606-2345 के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जी स्पेशल कोर्ट जो है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023, इन्होंने आज फॉर्मली इंडाइट किया है एक दफा से फिर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर, और ये जो ऑर्डर्स हैं ये इशू किए थे जज अब्दुल हसनात जुल्कर नैन ने, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मिसयूज और मिसप्लेस किया है डिप्लोमेटिक केबल। हालांकि इन दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया था, लेकिन इनको दूसरी दफा इंडाइट किया गया। इस मौके पे एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी भी थे। खान और कुरैशी जो हैं दे वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर लॉयर्स उस्मान गुल एंड बैरिस्टर तैमूर मलिक। कल की जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर फैमिली और कुछ रिपोर्टर्स जो थे उनको अलाउ किया गया था कोर्ट रूम के अंदर। खान के लॉयर जो हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं बहुत ही हेस्टी मैनर के अंदर आगे लेके गई गई हैं, लेकिन जज जुल्कर नैन ने कहा कि नहीं, मैं बात जो है मेरिट पे कर रहा हूं और मैं बिल्कुल इस हियरिंग के अंदर इम्पार्शियलिटी बनाए रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर जो है ये क्वेश्चन डाला गया था कि 12 साल पुराना जुल्फिकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस है वो क्या जुडिशियल मर्डर था कि नहीं था। ये सवाल उठाया था बीबी जरदारी ने, और उन्होंने पूछा था इनसे कि जी आप ये कैसे कर सकते हैं। जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ऊपर और कोई बहस नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू किया गया था, रिव्यू पिटीशन बिठाई गई थी और इसको अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, तो इसलिए अब इसके ऊपर और कोई बात नहीं की जाएगी। 9 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने ये रेफरेंस सुना था जुल्फकार अली भुट्टो के मर्डर केस का, और ये जो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पीपीपी के काउंसिल फारूक नायक जो थे वो भी यहां पे थे। लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम अब इसकी हियरिंग जो है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024 से फिर से करेंगे। बीबी जरदारी जो है आज लॉयर्स जो है पिशावर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उससे ये आज बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है उसने एक मर्डर कमिट किया था और ये जो जुडिशरी है ये को एक्यूज्ड बनती है इस मर्डर के अंदर, और जो एक मर्डर होता है वो मर्डर ही होता है चाहे उसको कितने ही साल क्यों ना गुजर जाएं, और जो मैं जो है जस्टिस मांग रहा हूं इस मर्डर के लिए और ये हर किसी का लीगल राइट होता है। ये हियरिंग जो है इसको रेफरेंस दायर किया था हियरिंग के लिए आसिफ अली जरदारी जो इनके वालिद हैं 2011 में, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि जुल्फकार अली भुट्टो को जो 1978 में डेथ दी गई थी उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू बिठाए, तो उसके ऊपर ये बात की जा रही थी। 6 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है जिसने के 5-1 मेजोरिटी से ये वर्डिक्ट कंडीशनली सस्पेंड किया है कि अक्टूबर 23 का जो यूनानिमस रूलिंग थी जिसमें कि ये कहा गया था कि मिलिट्री जो ट्रायल्स ऑफ 103 सिविलियंस हैं उनको खत्म किया जाए और उनको सिविल कोर्ट्स में लाया जाए, तो उनको कंडीशनली उसको सस्पेंड किया जा रहा है। ये जब इन्होंने आज ऑर्डर पास किया है तो ये May 9 के राइट्स के ऊपर, तो इसमें 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था कंप्राइजिंग जस्टिसेज एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, याह्या अफरीदी, सैयद मजर अली अकबर नकवी एंड आयशा मलिक, उन्होंने कहा था जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है कि जो सिविलियंस हैं उनका कोर्ट के जो मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर ट्रायल्स चलाए जाएं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर उस्मान अवान जो थे उन्होंने कोर्ट को कहा था कि आप कंडीशनली इसको अप्रूव करें और फिर इसकी जो है ताकि एटलीस्ट हियरिंग रिज्यूम की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम इसको कंडीशनली जो है हमारा पहला जो फैसला था उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इन लोगों के फैसले जो मुकदमा है वो चला सकती हैं, लेकिन फाइनल जो फैसला होएगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर होएगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है 3rd week of January तक के लिए हम एडजर्न कर रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही जुडिशरी, एक दिन कहते हैं कि नहीं सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते, दूसरे दिन कहते हैं कर सकते हैं, भाई क्या चल रहा है, कोई आप अपना मन बनाओ कि क्या चाहते हो। ये आज जो खबर है इसने आज काफी पाकिस्तान के अंदर खलबली मचाई, एंड अगेन ये खबर आपने बहुत ही कम देखी होगी पाकिस्तान के अंदर जो मैं आपको बताने वाली हूं। बलोच के टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉन अचकज़ई जो हैं उन्होंने आज अमरीका को कहा है कि आप पाकिस्तान में आके बेसिस लें। आपको पता है कि यह कितना बड़ा इशू था कि इमरान खान को बल्कि निकाला गया था इसके ऊपर और उनको कहा गया था कि भाई आप जो हैं कैसे, जो क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट बोल दिया था, तो उनको कहा था कि भाई तुम कैसे एब्सोल्यूटली नॉट बोल सकते हो अमेरिका को बेसिस देने के लिए। आज बलोच ये जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं जॉन अचकज़ई, उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका को कहते हैं कि आप आके बेसिस लें। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर ये सारी पोस्ट डाली और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसको हटा दिया वहां से। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ये अचकज़ई साहब ने ये क्यों ऐसे डाला है, ये उन्होंने उस वक्त डाला कि जिस वक्त आपको कल मैंने बताया था कि 23 पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ्स हुई थी और 30 ट्रुप्स जो हैं उनको भी जख्मी किया गया था, और ये सारे का सारा हमला जो है तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने किया था DIK के एरिया के अंदर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर अफगान गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो लोग हैं ये आपके इलाके से हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, और बल्कि एक डिमार्श जो है वो अफगान चार्डी अफेयर सरदार अहमद शाकिब को दिया गया था। फॉरेन सेक्रेटरी साइरस साजिद काजी जो हैं उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, और ना सिर्फ ये कि ये परपेट्रेटर्स जो हैं इनको एक्स्ट्राडिशन आप करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, बल्कि ये बाकी के भी जो TTP लीडर्स हैं उनको भी आप सजा दें। इंटरिम अफगान गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम आपके इस जो हमले की आपने बात की है उसके ऊपर एक प्रोब तो बिठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हर चीज के लिए जो है काबुल को ब्लेम मत दे। लेकिन जॉन अचकज़ई ने जो बात की कि भई हमारे ऊपर बेतहाशा हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान की सॉइल से, तो एज अ काउंटर टेररिज्म मेजर यूएस जो है वो आके यहां पे बेस बनाए, बल्कि ड्रोन बेसिस बनाए टू टारगेट मिलिटेंट सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। आज इसके ऊपर काफी शोर मचा पाकिस्तान में। तो भाईजान जो है पता नहीं नशे में थे किधर थे, पायन की गल कर रहे हो तुसी, फिर अमरीका नू बेसिस देने फिर उन्होंने। तो ये जनाब जो है ये सारा कुछ हुआ। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने आज कहा है कि पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है पाकिस्तान का फर्स्ट एवर न्यूक्लियर स्पेस पॉलिसी। और इसके ऊपर जो केयर टेकर मिनिस्टर फॉर आईटी एंड कम्युनिकेशंस डॉक्टर उस्मान सैफ हैं, वो आज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ मौजूद थे इस्लामाबाद में। और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही जरूरी है कि पाकिस्तान की एक नेशनल स्पेस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफर करेगी अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर। और ये नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो है इसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने 3 लैंडमार्क डिसीजन जो है आईटी और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए अप्रूव किए हैं। और वो कहते हैं जी कि इसकी वजह से जो है ना सिर्फ स्पेस पॉलिसी जो है उसमें तेजी आएगी, बल्कि इसमें जो है बहुत सारी बाहर की कंपनीज इंटरेस्ट शो करेंगी कि आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जी अबाउट टाइम, बिल्कुल आपको ही करना चाहिए। अच्छा जनाब, आज की ये जो रिपोर्ट है अगेन ये आपकी बहुत आंखें खुलाएगी, और ये आपने बिल्कुल जाहिर है नहीं पढ़ी होगी क्योंकि ये कहीं पे भी और पोस्टेड नहीं है, ये सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये न्यूज आई है। और वॉशिंगटन पोस्ट की ये न्यूज अब देखे ना, ये अब कट्टे खुलते जा रहे हैं इंडिया के कट्टे खुलते जा रहे हैं। पहले कनाडा ने कहा कि आपके लोग जो इंडिया को कहा, आपके लोग इन्वॉल्व हैं हमारे सॉयल पे हमारे बंदों को मारने के। फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा, 5 आईज नेशंस ने इंटेलिजेंस दी थी कनाडा को, ठीक है, विच मींस कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये सारे भी शामिल हैं कि इनको भी डर है, ठीक है जी। फिर FBI ने आपको कह दिया। आज वॉशिंगटन पोस्ट की ये जो रिपोर्ट है इसने तो जनाब पूरी कहानी खोल के रख दी है। उसने कहा जी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा नेटवर्क चला रहे हैं डिस इन्फो लैब के अंडर, जिसको कि क्रिएट किया गया था 2020 में, जिसको चला रहा है रॉ का एक हाजिर सर्विस अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दिब्बे सतपाथी, 39 इयर्स इनकी एज है। और उसका काम ही यह है कि वो सारी डिस इंफॉर्मेशन हजारों ही या सैकड़ों ही जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उससे फैलाए, जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जिसमें के पाकिस्तान और जिसमें के ISI और जिसमें के चाइना शामिल है, और हिंदुस्तान के हक में और मोदी जी और उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसके हक में सारी बातें करें और एलिगेशंस लगाएं और उनको वायरल करें। ये जनाब आज वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अच्छा जी, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी कि हमने बेशुमार कोई तकरीबन 100,000 रीपोस्ट्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, डिस इन्फो लैब जो है वो जो एक्स के ऊपर इन्होंने जो डाली हुई थी सारी स्टोरियां, उनको हमने एनालाइज किया है और हमको पता चला है कि ये रॉ का हाजिर सर्विस अफसर है जो इसको सारा कुछ चला रहा है। और वो एनकरेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं कि इनको रीपोस्ट करें, और जो भी कोई बीजेपी की डोमेस्टिक पॉलिसी है उसको फॉरेन ऑडियंसेस तक पहुंचाएं, उसको फेवरेबल बनाएं और उनको बताएं कि जो हिंदुस्तान काम कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, चाहे वो रशिया से वेपन्स और एनर्जी लेना है, चाहे वो इसराइल से लेना है, तो हिंदुस्तान के ये तमाम के तमाम कदम जो हैं ये करेक्ट हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तान और उसकी ISI और जो मुस्लिम ब्रदरहुड, आपको पता ही है मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो इजिप्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये लोग पसंद नहीं करते हैं, वो और बाकी ये जो चाइना जो कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। वो कहते हैं जी इन वॉशिंगटन पोस्ट वाले कि डिस इन्फो लैब ने तकरीबन जो है 28 रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश की थी, जिसके के अंदर उन्होंने ये सारे लोगों का जिक्र किया था और कहा था कि हिंदुस्तान को इनसे बे इंतहा जो है वो खतरा है और दुनिया जो है उसकी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए। समित गांगुली जो है उनका इंटरव्यू लिया है इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट वालों ने, जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं इंडियन डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और इंडियाना यूनिवर्सिटी एट ब्लूमिंगडेन के ऊपर पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी वैसे तो ये रूटीन है, दुनिया की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसी तरह के काम करती हैं, लेकिन अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं यूएस क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं ले रही और उनके सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस को सिविल नहीं ले रही हैं सीरियसली, और अपना ये काम चलाए रखेंगी तो फिर यूएस इनको समझेगा कि ये एक केजीबी की टैक्टिक्स जो कि कोल्ड वॉर के बीच में थी वो इन्होंने चलाई हुई है। और मोदी जी की जो गवर्नमेंट का ये पार्ट एंड पार्सल है कि जो डायसेंटिंग वॉइसेस जिनको के घर में बंद किया जा रहा है उनको बाहर भी बंद किया जाए ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बाहर बात ना करे। वॉशिंगटन पोस्ट का ये जो आर्टिकल है इसके के बारे में जो डिस इन्फो लैब है उसने कहा जी कि ये इन्होंने अपना इनका डिसगाइज्ड रिवेंज पीस है जो इन्होंने हमारे खिलाफ लिखा है, हम इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं। जोयोजीत पाल जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एट मिशिगन यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा है जी कि ये इंडियन राइट विंग जो है ये आज की इंटेलिजेंस दुनिया का नया प्लेयर है और ये अब जो है शेप कर रहा है ग्लोबल डिस्कशंस को इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो ये जनाब बड़ी खतरे में नाक खबर आई है जी, ये आई है। और जनाब आज हुआ बड़े ही खतरनाक बात, वो हुई है कि जो हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट अभी खुला है उसके ऊपर छह बच्चों ने हमला किया, आज हमला किया। और वो जो थे उनमें से कुछ लोग जो थे गैलरी के अंदर ही बैठे हुए थे जो प्रेस गैलरी होती है और वो जंप करके नीचे आए हाउस में और उन्होंने एक येलो कलर का जो है एक धुआं सा छोड़ा। अब ये जो छह लोग हैं इनका पता चला है कि ये सोशल मीडिया ग्रुप जो है एक जस्टिस फॉर आजाद भगत सिंह उसके साथ ये रिलेटेड हैं। इसके अंदर एक है डी मनोरंजन जो कि इंजीनियर है और मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सागर शर्मा जो कि लखनऊ से ग्रेजुएशन जिसने की है, नीलम जो कि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है हिसार से, अनमोल शिंदे जिसने कि बहुत कोशिश की कि उसको पुलिस में दाखिला मिल जाए या मिलिट्री सर्विस मिल जाए लेकिन वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल लिया, तो ये सारे शामिल थे। इन चारों को पुलिस ने अब पकड़ लिया है, दो और जो हैं ललित झा और विकी दे आर एट लार्ज उनको नहीं ये पकड़ सके। इन्होंने जंप किया जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैलरी से और इन्होंने येलो कलर की कोई गैस के कैनिस्टर जो थे वो यहां पर छोड़े। जब इनसे पुलिस ने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी कि चूंकि हमको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहते थे कि यूथ के जो मसले हैं उनकी तरफ आपको देखने की जरूरत है। पुलिस जो है वो कह रही है कि हमको इनके कोई भी पास रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी जो है इसकी एक प्रोब जो है वो बिठाई गई है। नीलम जो इसमें खासतौर पर लड़की है वो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी और रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी देखी गई थी और ये इसलिए आज हिंदुस्तान की आंखें इसके ऊपर चौंकी हैं क्योंकि बिकॉज ये अटैक आज पार्लियामेंट के ऊपर एग्जैक्टली हुआ है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ अटैक ऑन ओल्ड पार्लियामेंट 22 साल पहले जो हुआ था जिसमें कि 5 टेररिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे जिनको कि फाइनली फिर गन डाउन किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसको के मारने की कोशिश की हिंदुस्तान ने यहां पे अमेरिका में, उसने भी कहा था कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर दिसंबर 13 के पास अटैक हो सकता है। तो जनाब ये तो बड़ी अब खतरनाक बातें, अब ये कोई टेररिस्ट अटैक है क्या है क्या नहीं है। आज लोगों ने बराक ओबामा साहब के ऊपर भी बड़े ज्यादा एतराज किए जी क्योंकि उनकी फिल्म आई है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड और उसके अंदर जो है उसके अंदर एक सेंटेंस है जो एक ब्लैक कपल जो है वो कह रहा है कि सॉरी मैं तुमको याद कराना चाहता हूं कि जो दुनिया है इट इज फॉलिंग अपार्ट लेकिन तुमको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है खास तौर पे वाइट्स को। अब ये जो फिल्म है इसके प्रोड्यूसर जो हैं ओबामा साहब हैं और इसको इनकी जो कंपनी है हायर ग्राउंड्स वो प्रोड्यूस कर रही है, इसको रिलीज किया जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर और इसके ऊपर दो फैमिलीज जो हैं पोर्ट्रे करती हैं जो कि नेशन वाइड ब्लैकआउट के अंदर जो हैं अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं। तो आज लोगों ने एक्स के ऊपर इनको भी बड़ा झाड़ा, उन्होंने कहा कि वाइट्स ही थे जो आपके पीछे खड़े हुए थे भाईजान जिसकी वजह से आप जीते थे और आप जो है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट बने थे। सुनील शेट्टी साहब जो हैं आज एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि ये जो बायकॉट बॉलीवुड इसकी जो सारी कैंपेन चल रही थी इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उनका कहना था कि जी वी आर ओवर दैट, कुछ लोग जो है उनको इंडस्ट्री के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगा और वो हमेशा जो है वो इंडस्ट्री के खिलाफ बात करते रहेंगे, इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी चीजों से गुजर रही थी उसके ऊपर एक बैड पैच आया हुआ था, अब भी 10 लोग हियर एंड देयर कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे खराब बातें करते हैं लेकिन ज्यादातर ये ट्रोल्स जो है अब मर चुके हैं, तो वेयर आर ऑल दोज हैशटैग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हम अब जो है आगे चल रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं। काजोल जो हैं जी उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बड़ी सनसनीखेज बातें की, उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि मेरे ऊपर मोलेस्टेशन के सीन्स जो हैं वो जो हैं फिल्म लाए जाएं, तो लोगों ने वहां पे बैठे हुए कहा कि मैडम आपने तो बड़ी सारी फिल्में की हैं जिसमें कि आपने मोलेस्टेशन सीन्स में पार्टिसिपेट किया था, उसने कहा हां मैंने किया था लेकिन अब मैं सबको कहती हूं कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द मोलेस्टेशन सीन्स, क्योंकि जिस वक्त आप वो कर रहे होते हैं तो वो एक्टर भी इंसान है, वो सब कुछ फील कर रहा होता है, विच इज वेरी बैड. और कैमरा जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, वो हमारे एक्सप्रेशन जो है उसको पकड़ लेती है. और मैं जाना चाहती हूं ज्यादा एज अ गुड एक्ट्रेस, इसलिए नहीं, और मैं आई नो 100 वेज टू बी अ गुड एक्ट्रेस. इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं मोलेस्टेशन का कोई सीन करवाऊं तो ही मुझे माना जाएगा कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं. ठीक है जी. और जनाब पीसीबी ने आज शाहीन शाह अफरीदी साहब को वाइस कैप्टन बनाया है. ये जो 3 मैच टेस्ट सीरीज हो रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें, और ये पहले ही इन्होंने T20 टीम के लिए बनाया है इनको कैप्टन. ये जो फर्स्ट फीचर होने वाला है बैनो कादर ट्रॉफी का, इसके अंदर ये एज अ वाइस कैप्टन नजर आएंगे. और जो है आज तक शाहीन शाह अफरीदी ने 27 टेस्ट खेले हैं, 53 ODIs खेले हैं, 52 T20s खेले हैं. शान मसूद जो हैं वो कैप्टन करेंगे टेस्ट टीम को. आपको पता ही है कि बाबर आजम जो थे उनको ऑल 3 जो क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स हैं उनसे कैप्टनसी से हटाया गया था. ये जो टीम है इसके अंदर इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील और सरफराज अहमद जो कि विकेट कीपर भी हैं, ये बैटिंग लाइनअप में हैं. ऑलराउंडर सलमान अली आगा और फहीम अशरफ को भी रोप इन किया गया है. बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, शहजाद जो कि पहली दफा अपना डेब्यू कर रहे हैं फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी रोप इन किया गया है, वो भी बॉलिंग लाइनअप बनाएंगे. पाकिस्तान ने वैसे आज तक कभी भी कोई टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे सिंस 1995 नहीं जीता है. पाकिस्तान हैज लॉस्ट 26 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव ओनली 1-4 इन द लास्ट 5 सीरीज. तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को कंप्लीटली वाइट वॉश किया था. और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है खैर ओडीआई की जो है वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थी, यानी कि वर्ल्ड कप चैंपियन है. आपको पता ही है कि फाइनल में उसने इंडिया को हराया था इंडिया के अंदर ही. एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, वेरी वेरी सैड न्यूज, बट दिस इज अबाउट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया. आपको पता ही है कि उस्मान खाजा साहब जो है उनके टेस्ट क्रिकेटर जो कि अब पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे, उन्होंने अपने जूतों के ऊपर जो उन्होंने जूते पहने हुए थे उस पर उन्होंने लिखा हुआ था फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स, All lives are equal. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जाहिर है कि आईसीसी ने शिकायत लगाई होगी. उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह के स्लोगन्स जो हैं आप अपने बूट के ऊपर नहीं लिख सकते हैं. हालांकि उस्मान खाजा ने कहा था कि ये सारा कुछ मैं पैलेस्टीनियंस को जो इतना मारा जा रहा है उनके सपोर्ट में मैं ये लिख रहा हूं. आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी कि हमने उस्मान खाजा के साथ बात की है कि जब आप पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए फर्स्ट टेस्ट आएंगे तो आप ये जूते पहन के नहीं आएंगे पर्थ स्टेडियम में. कल से मैचेस बाय द वे शुरू हो रहे हैं, टेस्ट मैच पहला शुरू हो रहा है 14 December कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो उन्होंने कहा जी कि आप ये जूते पहन के पर्थ के स्टेडियम में कल नहीं आएंगे, ये आपका अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है. तो वैसे तो हम जो प्लेयर्स के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमको आईसीसी के रूल्स जो हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. आईसीसी के रूल्स कहते हैं कि आप कोई भी इस तरह के पर्सनल मैसेज डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, या तो आपकी जर्सीज के ऊपर या आपके यूनिफॉर्म पे या आपके जूतों पे, बैट पे, कहीं पे भी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है पैट कमिंग्स, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने भी जो है उस्मान खाजा से बात की और मैंने उनको कहा कि आप वो वाले जूते पहन के पाकिस्तान के साथ पहला टेस्ट खेलने के लिए मैदान में नहीं आओगे तो वो नहीं पहनेगा. लो जी देख लो जी फाइन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री हैं जी. कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जी जो अमेरिका की 3 टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया और उनको कहा जी कि आप बताओ कि इसराइल के ऊपर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनके एंटी सेमेटिसिज्म आपके कैंपसेस पे चली है कि नहीं चली है. और उन्होंने कहा जी वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा हमको कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं. तो उनमें से एक बेचारी ने तो रिजाइन कर दिया और हार्वर्ड में तो फिर बड़ा शोर मच गया. उन्होंने कहा कि ये एकेडमिक फ्रीडम को आप चैलेंज नहीं कर सकते और हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारी प्रेसिडेंट जाए. और जो है वो बाकी फिर जो है अब ये शुरू हो गया. अब वो जूते पे भी, यानी जूते पे लिखा हुआ है कि वी रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स या जो भी वी सपोर्ट फ्रीडम या उसके ऊपर भी जब तकलीफ है जी इनको. हालांकि उसने झंडा नहीं बनाया हुआ पैलेस्टाइन का, जाहिर है जूते पे कैसे बनाएगा वो झंडा. एक उसने सेइंग लिखी है, कहते नहीं जी ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है. तो पायन फिर कोड ऑफ कंडक्ट विच की अंदर दोस्तों.
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड बकरे की न्यूज. इंशाल्लाह ताला बशर्त जिंदगी कल आपसे मुलाकात होगी और कल आपको बकरिया की न्यूज देंगे. फिलहाल वक्त हुआ है आपसे इजाजत चाहने का. शर्मा जी थैंक यू सो मच.
थैंक यू माजिद भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह इफ आई एम नॉट सिक.
अब लिए चलता हूँ आपको मैं जीशान अहमद की जानिब. जीशान लाइव जीशान एंड 24 आवर्स आप ये हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं. तो सुनते रहिए, देखते रहिए हमें एंड विल बी राइट बैक टुमारो इंशाल्लाह. اللہ حافظ.
Baby. जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं, रात को आऊंगा मैं, तुम ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी,
दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे